डॉक्टर काइल डनहम जॉब एली फाज एक 2024 काइल डनहम और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर काइल डनहम हैं जो अय्यूब के पवित्र ऋषि एलिफास पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह सत्र नंबर एक है, एडोमाइट बुद्धि के संदर्भ में एलिफास। नमस्ते, मेरा नाम काइल डनहम है। मैं एलन पार्क मिशिगन में डेट्रॉइट बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी में ओल्ड टेस्टामेंट का एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज मैं अय्यूब की पुस्तक पर चर्चा कर रहा हूं और विशेष रूप से उसके वकील या दोस्तों की भूमिका पर गौर कर रहा हूं। मैंने जॉब के साथ इन वार्ताकारों पर बहुत अध्ययन किया है और मेरा शोध प्रबंध कार्य विशेष रूप से वार्ताकारों में सबसे अग्रणी एलिफास पर केंद्रित है। इसे विप्फ एंड स्टॉक द्वारा द पियस सेज इन जॉब शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इसलिए यदि आप इसके पीछे की अधिक सामग्री में रुचि रखते हैं तो आप उस पुस्तक को उठा सकते हैं और उस सामग्री को देख सकते हैं जैसे मैं अय्यूब की पुस्तक को पढ़ रहा हूं। जैसे ही हम अय्यूब की पुस्तक पर आते हैं, यह कई मायनों में एक ऐसी पुस्तक है जिसने व्याख्याकारों को चकित कर दिया है। कई लोगों ने इस साहित्यिक कृति की जटिलताओं को समझने के लिए संघर्ष किया है। कई पाठकों के लिए संवादों की गहनता अय्यूब की महानता को प्रदर्शित करती है और पुस्तक आमतौर पर साहित्यिक प्रशंसा प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए थॉमस कार्लाइल ने कहा कि अय्यूब मानव कलम से लिखी गई अब तक की सबसे भव्य चीजों में से एक है। फिर भी व्याख्यात्मक कठिनाइयां तब और बढ़ जाती हैं जब पाठक उस भूमिका का आकलन करने का प्रयास करता है जो लेखक ने अय्यूब के तीन साथियों एलीपस, बिलदाद और जोफर के लिए अभिप्रेत है। बाइबल की कथा अप्रत्याशित रूप से और संक्षेप में बताती है कि दोस्तों ने अय्यूब के साथ हुई इस सारी बुराई के बारे में सुनकर उसके प्रति सहानुभूति और सांत्वना दिखाने के लिए एक साथ आने का समय तय किया। वास्तव में हम इसके बारे में अय्यूब 2 श्लोक 11 से 13 में पढ़ते हैं। मैं बस इन छंदों को पढ़ना चाहूंगा और फिर हम उन पर टिप्पणी करेंगे। जब अय्यूब के तीन मित्रों ने उस सब विपत्ति का समाचार सुना जो उस पर आई थी तो वे अपने अपने स्थान से आए। एलीपज तेमानी, बिलदद शूही और सोफर नामाथिटी। उन्होंने उसके साथ सहानुभूति दिखाने और उसे सांत्वना देने के लिए एक साथ आने का समय तय किया। और जब उन्होंने उसे दूर से देखा तो पहचान न सके और वे ऊंचे शब्द से चिल्लाकर रोने लगे और अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने अपने सिरों पर धूली आकाश की ओर छिड़क दी। और वे उसके साथ 7 दिन और 7 रात भूमि पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक शब्द भी न कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका कष्ट बहुत बढ़ गया था। मित्र की अचानक उपस्थिति उनकी आने वाली लंबी घुमावदारता का उल्लेख न करते हुए पाठक की जिज्ञासा को यह निर्धारित करने के लिए उकसाती है कि वे कौन हैं, वे क्या कह रहे हैं, उन्हें कैसे समझा जाना चाहिए और यह कहना चाहिए और जैसा वे कहते हैं वैसा बोलने का औचित्य क्या है। इसके अलावा सामने आने वाली किताब पाठक को कथित सहानुभूति और सांत्वना की प्रकृति को समझने के लिए प्रेरित करती है जो दोस्त अपने पूर्व मित्र को देने का इरादा रखते हैं। मित्रों के ऐसे किसी भी मूल्यांकन में प्राथमिक प्रवक्ता वार्ताकार एलिफाज में निहित व्याख्यात्मक अस्पष्टताएं तुरंत उभर आती हैं। एलीपस तीन साथियों में सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित है। वह बोलने वाले पहले व्यक्ति हैं और उनके भाषण दूसरों की तुलना में लंबे होते हैं। इस प्रकार कई विद्वान उन्हें एक परंपरावादी पारंपरिक ज्ञान धर्मशास्त्र के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं जो अगर किसी भी तरह से दोषी है तो अपने धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों को कठोरता से लागू करने में त्रुटियों से थोड़ा अधिक है। इसके अलावा एलीफास की पुस्तक में मुख्य परामर्शदाता के रूप में एक अभिन्न, यहां तक कि हम एक प्रतिमानात्मक भूमिका भी कह सकते हैं। उनके भाषण बाद के मित्रों के लिए एक आदर्श प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनका अनुसरण करते हैं। उनके भाषण अय्यूब में मानव वक्ताओं द्वारा पेश किए गए विभिन्न धर्मशास्त्रों में से प्रत्येक को छूते हैं। इससे हमारा तात्पर्य पीड़ा को ईश्वर की धार्मिकता के साथ सुलझाने के उनके प्रयासों से है। फिर भी अन्य लोग एलिपस की उस कठोरता के लिए आलोचना करते हैं जिसके साथ वह अय्यूब को अपमानित करता है, विशेषकर अपने बाद के भाषणों में। कुछ लोगों ने उसे एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जो अय्यूब को तुरंत नष्ट करना चाहता है। कुछ लोग उस पर शैतान द्वारा अनजाने में इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगाते हैं, जो शैतान के धोखे को अय्यूब पर थोपने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शैतानी उपकरण है। और जैसा कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि व्याख्याओं की इतनी श्रृंखला सामने आई है। एक और एलीफास पुस्तक में, शायद संपूर्ण धर्म ग्रंथ में, सबसे वाक्पटु वक्ताओं में से एक है। और फिर भी यहोवा ने पुस्तक के अंत में कड़ी फटकार के लिए उसे अलग कर दिया। पहली बार में व्यक्ति इन स्पष्ट विसंगतियों को हल करने के लिए संघर्ष करता है। और यहां तक कि सेप्टुआजेंट में अय्यूब के ग्रीक अनुवाद के समय से ही ऐसा लगता है कि अय्यूब के व्याख्याकारों ने दोस्तों की अपेक्षित भूमिका पर विचार विमर्श किया है। अय्यूब के शुरुआती ग्रीक अनुवाद में सेप्टुआजेंट अनुवादक एलीपस और अन्य दोस्तों की कठोरता को कम करते हुए उसे और उन्हें राजाओं में बदल देते हैं और उनके भाषणों को हिब्रू पाठ के एक चौकस पढ़ने से प्राप्त होने वाले भाषणों से अधिक परिष्कृत प्रदान करते हैं। यहां तक कि नए नियम में प्रेरित पॉल ऋषि से आधिकारिक रूप से उद्धरण देता प्रतीत होता है, जिससे व्याख्यात्मक अनिश्चितता बढ़ जाती है। 1 कुरिन्थियों 3:9 में पॉल कहता है, क्योंकि यह लिखा है, वह बुद्धिमानों को उनकी चालाकी में पकड़ लेता है। एलीपस के पहले भाषण में अय्यूब 5:13-1 उद्धरण। फिर भी भले ही प्रेरित पॉल एलीपस का हवाला देता है, इस आंकड़े के व्याख्यात्मक इतिहास में सब कुछ सामने नहीं आएगा। ऐसा प्रतीत होता था कि आरंभिक चर्च उनके साथ अस्पष्ट व्यवहार करता था, लेकिन मध्य युग तक आते आते पहले ऋषि के बारे में बहुत कठोर धारणा बन गई। और हम इसे एक व्याख्यात्मक द्विध्रुवीयता कह सकते हैं जो सुधार और ज्ञानोदय के बाद उत्पन्न हुई। कई लोगों ने उनकी एक असभ्य परामर्शदाता के रूप में आलोचना की जो धर्मशास्त्रीय अतिरेकता से ग्रस्त था। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक एलीफास उस क्षेत्र में चला गया जिसे हम व्याख्यात्मक पुनर्वास कह सकते हैं। उन्होंने अय्यूब की पुस्तक के विद्वानों और टिप्पणीकारों के बीच पुनर्जागरण का कुछ आनंद लिया, और यह आज तक कायम है। 21वीं सदी में हम तेजी से ऐसे कई अध्ययन देखते हैं जो तर्क देते हैं कि लेखक जानबूझकर एलीफास के संबंध में अस्पष्टता पैदा करता है, ताकि उसकी भूमिका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए हो। अब जब हम एलीपस और पुस्तक में उसकी भूमिका के बारे में सोचते हैं, तो उसकी व्याख्याएं मुख्य रूप से 2 पंक्तियों में होती हैं। पहला शिविर एलीपस को एक ऐसे हानिकारक परामर्शदाता के रूप में देखता है जिसे हम एक हानिकारक परामर्शदाता कह सकते हैं जिसका कोई धार्मिक योगदान नहीं है, यानी वह अय्यूब को नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। ये व्याख्याकार कहेंगे कि मित्र केवल बदमाश थे जिन्हें अय्यूब के लेखक द्वारा अय्यूब के अपने धर्मशास्त्र का सही प्रतिरूप प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसके विपरीत यह दर्शाता है कि लेखक पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में किस पर जोर देना चाहता था। इस प्रकार मित्र वास्तव में पुस्तक द्वारा संबोधित इस चुनौती को चित्रित करने के लिए बाध्य हैं। कोई निर्दोषों के कष्टों को परमेश्वर की धार्मिकता के साथ कैसे जोड़ सकता है? आमतौर पर इस दृष्टिकोण का एक परिणाम यह समझ है कि मित्र लकड़ी के और स्थिर थे, जिनमें अभिव्यक्ति की बहुत कम विविधता थी और पुस्तक के धर्मशास्त्र या इसकी थियोडिसी में जोड़ने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। हालांकि अन्य लोगों ने एक अलग रास्ता अपनाया है। उन्होंने एलिपस को पर्याप्त धार्मिक योगदान वाले एक परिष्कृत परामर्शदाता के रूप में देखा है। हाल के अध्ययन जैसे कि कैरल न्यूजोम नैतिक दुविधा की भावना को अधिक सटीक रूप से समझकर दोस्तों का पुनर्वास करना चाहते हैं, जिसे संवाद प्रदान करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए न्यूजोम का मानना है कि विजडम डायलॉग की साहित्यिक शैली जो अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच बातचीत के लिए मॉडल के रूप में कार्य करती है, यह बताती है कि आदान प्रदान को समान रूप से संतुलित बहस के रूप में देखा जाना था। मैनफ्रेड ओमिंग का भी इसी तरह तर्क है कि पाठ में सुरागों के बावजूद कि पाठक को उन्हें सच्चे दोस्त के रूप में समझना चाहिए, दोस्तों ने दुभाषियों के हाथों खराब प्रदर्शन किया है। और वह कहेंगे अच्छे मंत्रियों के रूप में भी। यह ओमिंग का कहना है, अय्यूब के दोस्तों ने ईश्वर और उसके साथ उसके पहले के रिश्ते के संदर्भ में उसकी प्रतियोगिता में विश्वासपात्र के रूप में बाहरी और आंतरिक प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत प्रदान करने के लिए कई तरीकों की कोशिश की। वह व्याख्यात्मक इतिहास में आगे कहते हैं, उन्हें असंवेदनशील वाक्यांश पोषक दयनीय दिलासा देने वाले माना गया है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की जरूरतों को नहीं समझा बल्कि भगवान की रक्षा करने की हठधर्मिता के साथ उसे कोड़े मारे। ओ एमिंग का कहना है कि ये नकारात्मक राय मुझे पाठ के लिए उपयुक्त नहीं लगती हैं, बल्कि कविता का इरादा उन्हें सच्चे दोस्त और अच्छे मंत्री के रूप में चित्रित करना प्रतीत होता है। ओमिंग तीन तरीकों का सुझाव देते हैं जिससे संभवतः मूल दर्शकों द्वारा मित्रों को प्रभावी परामर्शदाता के रूप में देखा जा सके। सबसे पहले जब वे शुरुआत में अय्यूब के पास आते हैं तो वे चुप्पी बनाए रखते हैं। वे अय्यूब के प्रति एकजुटता और धैर्य व्यक्त करते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे मित्र और बुद्धिमान सलाहकार हैं। दूसरा, बोलने में जल्दबाजी करने के बजाय वे अय्यूब द्वारा पहला शब्द कहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। इस तरह की संयमित सुनवाई जब वे सात दिनों तक बैठते हैं, अय्यूब को सबसे पहले अपनी बात कहने की अनुमति देता है। इसके बाद एलीफाज काफी संवेदनशील और सावधानी से शुरू होता है। तीसरा, मित्र आगामी बहस में एक दूसरे को केवल प्रतिबिंबक या पुनरावर्तक के रूप में नहीं बल्कि आदान प्रदान की एक सुविचारित प्रक्रिया में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, जिससे वे पारस्परिक रूप से संतोषजनक समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। वह यहाँ तक कहता है, वे अय्यूब की प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके लिए देहाती देखभाल की भावना लाते हैं। वे ऐसा कई माध्यमों से करते हैं। वे अय्यूब को उस पहले की धार्मिक स्थिति की याद दिलाते हैं जिस पर वह स्वयं कायम था। वे राहत के दैवीय वादों का बार बार संदर्भ देते हैं, जब तक कि अय्यूब ज्ञान की पवित्र परिषदों के सामने खुद को विनम्र रखता है। वे उनकी याद को धार्मिक ज्ञान की सामान्य संपत्ति कहते हैं, विशेष रूप से अच्छे अंत के साधन के रूप में पीड़ा के इस विचार से संबंधित है। वे लगातार इस कार्य परिणाम कनेक्शन को लागू करते हैं जिसके बारे में अक्सर अय्यूब की पुस्तक के संदर्भ में बात की जाती है, ताकि उसे अपने पापों को स्वीकार करने और सुलह की तलाश करने के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा सके। और इसलिए इन अध्ययनों के आधार पर हाल के विद्वानों ने मित्रों को न केवल प्राचीन ऋषियों के हास्यास्पद व्यंग्य चित्रों या वैचारिक सरल लोगों के रूप में देखने का प्रयास किया है, बल्कि गंभीर सोच वाले धार्मिक रूप से परिष्कृत परामर्शदाताओं और प्रामाणिक साथियों के रूप में देखने का प्रयास किया है। अय्यूब की पीड़ा का समाधान। अपने स्वयं के अध्ययन में मैं उस बिंदु तक पहुंचा हूं जिसे मैं एक समग्र दृष्टिकोण कहूंगा, जो एलिफस को मुख्य वार्ताकार के रूप में देखता है, लेकिन उस परिवेश पर अधिक ध्यान देता है जहां से वह उभरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुस्तक के अपने अध्ययन में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसे न तो एक भूसे आदमी के रूप में देखा जाना चाहिए, न ही एक हास्यप्रद विदूषक के रूप में, बल्कि वह यह सुझाव देने के लिए प्राचीन निकट पूर्वी थियोडिसी के महत्वपूर्ण तत्वों को एक साथ जोड़ता है। अय्यूब के पास अपनी दुर्दशा को हल करने का एकमात्र तरीका दैवीय तुष्टिकरण है। एलीपस का कहना है कि अय्यूब ने पाप किया है और अब उसे ईश्वर से नए सिरे से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। एलीफास पीड़ा और दैवीय विधान के प्राचीन निकट पूर्वी विचारों के सबसे पोषित सिद्धांतों का प्रतीक है। वह अय्यूब और अन्य लोगों को अपने सिद्धांतों की सुदृढ़ता के बारे में समझाने के लिए सभी उपलब्ध आधिकारिक संसाधनों का उपयोग करता है। हालांकि अय्यूब की सहमति न मिलने से मुख्य रूप से अन्य दोस्तों के साथ साथ एलीफास को भी शर्मिंदा होना पड़ा और पुस्तक के अंत में एक आश्चर्यजनक और नाटकीय परिणाम सामने आया। अय्यूब के पिछले अध्ययनों ने वास्तव में प्राचीन निकट पूर्वी पृष्ठभूमि के साथ पुस्तक में एलीफास और भाषणों में उनकी भूमिका की सुसंगत और संपूर्ण तुलना और विरोधाभास को अपर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया है, जिसमें से उनके विचार मूर्त रूप लेते हैं। और इसलिए इस अध्ययन में मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि प्राचीन निकट पूर्वी और अंतः मानव ज्ञान के बेहतरीन तत्वों के अग्रणी प्रस्तावक के रूप में एलीफस पुस्तक में एक प्रमुख स्थान पाने का हकदार है। इसलिए मैं बस कुछ ऐसे तरीकों के बारे में एक पल के लिए बात करना चाहता हूँ जिनसे यह अध्ययन हमें उस संदर्भ में जॉब को बेहतर ढंग से स्थापित करने में मदद करता है जहां से किताब सामने आने की संभावना है। अय्यूब के प्रति पिछले दृष्टिकोणों में अपर्याप्तताएं रही हैं, जिन्हें प्राचीन निकट पूर्वी पृष्ठभूमि में एलीफास के गहन अध्ययन से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले पिछले दृष्टिकोणों ने एलीपस को उसके स्वागत इतिहास के संदर्भ में वास्तव में नहीं समझा है। इतिहास में एलीपस को जिन विविध तरीकों से पढ़ा गया है उन्हें समझने से हमें पूर्वानुमानित नुकसानों से बचने में मदद मिलती है कि हमें उसे कैसे पढ़ना चाहिए, चाहे एक चरम या दूसरे में। यदि हम सेप्टुआजिन तक वापस जाते हैं तो हमें पता चलता है कि शुरू से ही व्याख्याकारों ने यह समझने के लिए संघर्ष किया है कि पुस्तक में एलीफास कैसे कार्य करता है। दूसरा, मैं सुझाव दूंगा कि पिछली परीक्षाएं उसके एडोमाइट उद्गम के निहितार्थों का पूरी तरह से पता लगाने में विफल रही हैं। अय्यूब में मुख्य पात्र संभवतः एडोमाइट हैं। अय्यूब उससे है, अय्यूब 1:01, एक भूमि जिसकी पहचान संभवतः एदोम, फिलिस्तीन या कनान के दक्षिण पूर्व में है, और एलीपज तिमान से है, जैसा कि अय्यूब 2:11 हमें बताता है। यह एदोम की सीमा से लगा हुआ इलाका है और एदोम और एदोमाइट ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एदोम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था और इस ज्ञान परंपरा का एलीपस के धार्मिक दृष्टिकोण और भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। एदोमाइट बोली और एदोमाइट शिलालेखों के हाल के अध्ययनों से उस धार्मिक और ज्ञान संदर्भ पर अतिरिक्त प्रकाश पड़ता है जिससे एलीपस और अन्य लोग उभरे, और इसलिए अपने अध्ययन में मैं इस सामग्री में से कुछ के साथ बातचीत करता हूँ। तीसरा, एलीपस ने जिन ज्ञान स्रोतों से अपनी धार्मिक प्रतिक्रिया का निर्माण किया है उनके बारे में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण ने एलीपस के दृष्टिकोण में बाधा उत्पन्न की है। उदाहरण के लिए, विद्वानों ने अक्सर उन्हें ड्यूटेरोनोमिक प्रतिशोधात्मक धर्मशास्त्र के संकीर्ण सोच वाले प्रस्तावक के रूप में देखा है। हालांकि यह दृष्टिकोण कालानुक्रमिक है और उन बहुआयामी स्रोतों और दृष्टिकोणों की सराहना करने में विफल रहता है जिनसे एलीपस आकर्षित होता है, और मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा फिर से प्राचीन निकट पूर्वी पृष्ठभूमि सामग्री को समझना है जो हमारी मदद करता है। और इसी तरह प्राचीन निकट पूर्वी धर्मशास्त्रों की पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका को समझना, इनमें से कुछ मुट्ठी भर मौजूद हैं जो एलीपस को व्यापक मेसोपोटामिया ज्ञान परंपरा में स्थापित करने में मदद करते हैं। अय्यूब से तुलना किए गए इन कार्यों का वृहद स्तर पर अध्ययन किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अय्यूब की पुस्तक को समग्र रूप से देखना और इन अन्य प्राचीन निकट पूर्वी समानताओं को देखना। ये बेबीलोनियन थियोडिसी, द टेल्स ऑफ द राइटियस सफर, लुडलुल बेल नेमेकी और अन्य जैसे कार्य होंगे। हालांकि इन अध्ययनों में इस बात पर गहन विचार नहीं किया गया है कि इनमें से कई कार्यों में पीड़ित एक मुख्य परामर्शदाता, एक मुख्य वार्ताकार के साथ कैसे बातचीत करता है, जैसा कि अय्यूब की किताब में है। और अय्यूब की पुस्तक में यह भूमिका एलीपज द्वारा पूरी की गई है। दूसरे शब्दों में, जिसका अतीत में पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है, वह यह है कि इन प्राचीन निकट पूर्वी कार्यों में लगभग हर मामले में धर्मी पीड़ित एक मित्र के साथ बातचीत करता है जो उसे समाधान की ओर ले जाना चाहता है। यह अय्यूब की पुस्तक में भी होता है, लेकिन अक्सर अतीत के अध्ययनों से इस बात पर पर्याप्त रूप से बातचीत नहीं हुई है कि तब मूल दर्शकों ने एलीपस से कैसे कार्य करने और पुस्तक में अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा की होगी। तो इनका निहितार्थ है कि हमें एलीपस को प्रमुख ऋषि के रूप में कैसे पढ़ना चाहिए। अंत में, यदि हम इन अंतर्दृष्टियों को एक साथ रखते हैं तो हमें समग्र रूप से अय्यूब की पुस्तक की बेहतर समझ प्राप्त होगी। यदि एलीपस और अन्य दोस्तों से प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान धर्मशास्त्र की परंपरा में अपेक्षा की जाती है कि वे अय्यूब को पश्चाताप और ईश्वर के साथ मेलमिलाप की ओर ले जाए और फिर भी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यह अय्यूब के लेखक के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को रेखांकित करता है। इस अप्रभाविता के माध्यम से जॉब का लेखक पीड़ा के गहन प्रश्नों को हल करने में पारंपरिक प्राचीन निकट पूर्वी धार्मिक दृष्टिकोण की विफलता को प्रस्तुत या जोर दे रहा है। ये प्रश्न आज भी कई लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए यद्यपि एलीपस बुद्धिमानों की अपेक्षित सलाह को सामने लाता है, अय्यूब का बाइबल लेखक दर्शाता है कि उसकी सलाह अंतः त्रुटिपूर्ण है। धर्मी पीड़ित व्यक्ति अपनी दुर्दशा और ईश्वर की अच्छाई और संप्रभुता पर शास्त्रीय जोर के बीच द्वंद्व में निहित तनाव को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य से किसी को यह एहसास होता है कि अय्यूब की पुस्तक बाइबल के ज्ञान लेखों के भीतर एक उल्लेखनीय प्रतिवाद के रूप में कार्य करती है। यद्यपि एलीफास प्राचीन निकट पूर्व में मानव ज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि और सबसे गहन दृष्टिकोण का प्रतीक है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अंततः केवल मानवीय ही रह जाता है। दूसरी ओर ईश्वर का समाधान प्रतिबिंदु द्वारा चिह्नित है। अय्यूब की पुस्तक में, जैसा कि इतिहास में है, ईश्वर का अंतिम निर्णय है। विलुप्तिकरण के समर्थक के रूप में एलीपस एक अग्रणी प्राचीन धार्मिक विधिवेत्ता हैं, जो दैवीय रूप से निर्धारित साधनों के बजाय मानवीय तरीके से ईश्वर के समक्ष धार्मिकता प्राप्त करना चाहते हैं। मोज़ेक कानून का पूर्वाभास करने वाले एक कानूनविद के रूप में एलीफास धार्मिक और धार्मिक गुणों का प्रदर्शन करते हैं जो पतन के बाद से मानवता के लिए स्थानिक हैं। फिर भी आदम, कैन और मानव इतिहास के मूल से अन्य लोगों की तरह नाराज ईश्वर के साथ धार्मिकता प्राप्त करने के एलीपज के अनुचित साधन विफलता में परिणत होते हैं। अय्यूब की पुस्तक और उल्लिखित घटनाएं और भाषण धार्मिक समुदायों के भीतर पाठकों को पाप, पीड़ा, धार्मिकता और दैवीय विधान के बारे में महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रदर्शित करते हैं, जो आज भी हमारे लिए धार्मिक और निरंतर विचारशील और निरंतर धार्मिक प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। लेकिन वे निराश आस्तिक के लिए सांत्वना भी प्रदान करते हैं। पुस्तक में ईश्वर के सशक्त चरित्र चित्रण और चित्रण के माध्यम से जो सृष्टि का संचालन और संचालन करता है। पुस्तक में उनकी भूमिका को समझने से व्यक्ति ईश्वरीय परोपकारी विधान को पूरी तरह से समझ पाता है, जो ईश्वर के लोगों के लिए जीवन के विवरण को निर्देशित करता है। इसलिए उन उदात्त भव्यताओं तक पहुंचने से पहले हमें पहले यह समझना चाहिए कि प्राचीन पाठकों ने अय्यूब और इसलिए एलीपस को अपनी परंपराओं के भीतर साहित्यिक शख्सियतों और संतों के रूप में कैसे देखा। अय्यूब कौन है? अय्यूब नाम का उल्लेख पुराने नियम में उस पुस्तक के बाहर दो बार किया गया है जिसमें यहेजकेल 14 छंद 14 और 20 में उसका नाम लिखा है। वहां यहेजकेल अय्यूब को विश्वास के एक प्राचीन प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है, यदि ये तीन मनुष्य नूह, दानियेल और अय्यूब भी उसमें होते तो भी वे बचा लेते, परंतु उनकी धार्मिकता से उनका प्राण ही प्रभु परमेश्वर की वाणी है। अपोक्रिफल ज्ञान लेखन बेन सिरा में प्रशंसित नायकों के पंथ में अय्यूब का नाम भी दिखाई देता है, जो ऐसा कहता है, क्योंकि भगवान ने अय्यूब का भी उल्लेख किया है जो न्याय के सभी तरीकों को मजबूती से रखता था। वहां का लेखन ईजेकील पर निर्भर प्रतीत होता है। नए नियम में प्रेरित जेम्स अय्यूब को अनुकरणीय सहन शक्ति के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। तुमने अय्यूब की दृढ़ता के विषय में सुना है और तुमने यहोवा की युक्ति को देखा है कि यहोवा कैसा दयालु और दयालु है। व्यक्तिगत नाम जॉब को दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अक्काडियन, असीरियन, मिस्र और उगारिटिक के शिलालेखों में व्यापक रूप से प्रमाणित किया गया है। उदाहरण के लिए यह 14वीं शताब्दी के अमरना पत्रों में अलग के एक एमोराइट शिलालेख में, मिस्र से 19वीं शताब्दी के निष्पादन ग्रंथों में और महल के अधिकारियों की 13वीं शताब्दी की सूची सहित कई उगारिटिक ग्रंथों में दिखाई देता है। नाम के अर्थ के संबंध में कई लोगों ने कुछ सजातियों के आधार पर शत्रुता का अर्थ या शत्रुता प्रदर्शित करने का सुझाव दिया है और अय्यूब नाम ओएव और शत्रु के लिए शब्द ओएव के बीच एक कथित अनुरूपता बताई है। जो लोग इस संबंध का समर्थन करते हैं वे अय्यूब 13:24 जैसे पाठ की ओर इशारा करते हैं जिसमें अय्यूब ईश्वर पर अपना शत्रु होने का आरोप लगाता है और उनका तर्क है कि लगभग निश्चित रूप से अय्यूब के मूल पाठकों ने इस अर्थ को समझा होगा। हालांकि डेविड क्लाइंस ने सुझाव दिया है और मैं इस मामले में उनके नेतृत्व का अनुसरण करता हूं कि शब्द की उत्पत्ति और अर्थ को उगारिटिक संज्ञेय से अधिक निकटता से जोड़ा जा सकता है। युगारिटिक साक्ष्य से पता चलता है कि नाम की व्युत्पत्ति दो शब्दों के योग से हुई है, आए जिसका अर्थ है कहा और का जो एक थियोफोरिक घटक होगा। दूसरे शब्दों में यह दिव्य पिता को प्रतिबिंबित करेगा। एक समान नाम है अयाकू जिसका अर्थ है मेरा भाई कहाँ है, और इसलिए अय्यूब नाम का अर्थ होगा मेरे दिव्य पिता कहाँ है। क्लिंस का सुझाव है कि यदि यह मामला है तो अय्यूब नाम का उल्लेख ही दैवीय मदद की गुहार है, और मुझे लगता है कि नॉर्थ वेस्ट सेमिटिक के साथ कुछ संबंध हैं जो मुझे इस दिशा में ले जाते हैं। अब अय्यूब कहां से आता है? दो मुख्य सिद्धांत हैं। अय्यूब 1:01 हमें बताता है कि वह उस देश से है और दो प्रमुख परंपराएं या तो आधुनिक सीरिया में या प्राचीन एदोम या अरब में स्थित हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि कनेक्शन सीरिया से जोड़ा जाना है। जोसेफस के कुछ लेखों और अन्य पुरातात्विक खोजों के अनुसार यह एक प्राचीन असीरियन शिलालेख के आधार पर है। बार्टन का तर्क है कि उस आधुनिक सीरिया में स्थित था और वह इसे 9वीं शताब्दी के शल्मनेसर द्वितीय के असीरियन शिलालेख पर आधारित करता है, लेकिन बाइबल के आंकड़ों को अधिक बारीकी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि असीरियन उत्पत्ति का प्रमाण विकल्प की तुलना में अधिक कमजोर है, और यह इस ओर इशारा करता प्रतीत होता है कि अय्यूब में मुख्य पात्र एडोमाइट हैं। उसकी पहचान एदोम, कनान के दक्षिण पश्चिम या फिलिस्तीन से की जानी है, यह कई कारकों से पता चलता है। सबसे पहले संरक्षक नाम उस उत्पत्ति 36:28 की एडोमाइट वंशावली में पाया जाता है। दूसरा, पुराने नियम में काव्यात्मक समानता के माध्यम से उसको एदोम से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए विलाप गीत 4:21 में लेखक कहता है, हे एदोम की बेटी, तुम जो उस या उस देश में निवास करती हो आनंदित और मगन हो, ऐसा लगता है कि यहाँ लेखक एदोमियों की पहचान उन लोगों के रूप में करता है जो उस देश में रहते हैं। तीसरा, अय्यूब की पुस्तक में अधिकांश नाम एडोमाइट मूल के प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 36 की एडोमाइट वंशावली में एलीपज प्रमुखता से शामिल है। चौथा, एलीपज जो अय्यूब का प्राथमिक वार्ताकार है, तिमान से आता है, एक क्षेत्र जो कई अनुच्छेदों में एदोम के अंतर्गत शामिल है, जैसे कि यहेजकेल 25 और अमोस 1। ये भी संबंधित क्षेत्र हैं एदोमी साम्राज्य और एदोमी बुद्धि के साथ। एदोम और तिमन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और वे बाइबल ग्रंथों और बाइबल से परे ग्रंथों दोनों में एक गहन ज्ञान परंपरा को कायम रखने के रूप में जुड़े हुए हैं। तिमन शब्द का प्रयोग पुराने नियम में लगभग 20 बार किया गया है और यह आम तौर पर दक्षिण में क्षेत्र को दर्शाता है। तिमन नाम उत्पत्ति की पुस्तक में एसाव के वंशजों में से एक अर्थात उसके कबीले के एक आदिवासी सरदार के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसे उत्पत्ति 36, 15 और 42 में देखते हैं। अधिक विशेष रूप से वह एसाव का पोता और एलीपज का पुत्र है जो एसाव का पहलौठा है। यह स्पष्ट है कि एदोमाइट सरदारों के नाम एदोमाइट क्षेत्र के क्षेत्रीय परिक्षेत्रों से जुड़े हुए थे और इसलिए यह एलीपज और तिमान और संबंधित उपनाम या स्थान के नाम को क्षेत्र को दर्शाने वाले के रूप में पहचानने के लिए एक मजबूत मामला बन जाएगा जो वास्तव में एदोमाइट था। एदोम के दो सबसे प्रमुख क्षेत्रों के रूप में तिमन को बाइबिल की भविष्यवाणी में बसरा के साथ जोड़ा गया है। तिमन के क्षेत्र को संभवतः एदोम के दक्षिणी जिले और बसरा को उत्तरी जिले के मुख्य शहर के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए उदाहरण के लिए आमोस की पुस्तक में आमोस ने यहोवा के फैसले के बारे में भविष्यवाणी की है, मैं तिमन पर आग भेजूंगा और यह बसरा के गढ़ों को भस्म कर देगी। यहेजकेल 25 तिमान को एदोम के एक अन्य क्षेत्र ददान से जोड़ता है। वहां लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपना हाथ एदोम के विरुद्ध बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूंगा। मैं तिमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ दूंगा, वे तलवार से मारे जाएंगे। बाइबल के कई अनुच्छेदों में तिमन की पहचान एदोम से ही की गई है, विशेष रूप से प्रसिद्ध ज्ञान के स्रोत के रूप में इसके संबंध में। यिर्मयाह 49:7 और 20 में भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने तिमान के प्रसिद्ध बुद्धिमान लोगों के लिए विनाश की भविष्यवाणी की है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे सिनेकडोचे द्वारा पूरे एदोम के लिए संदर्भित किया जाता है। यिर्मयाह एदोम के विषय में यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तिमान में बुद्धि अब न रही? क्या विवेकी से सम्मति नष्ट हो गई? क्या उनकी बुद्धि लुप्त हो गई है? फिर वह एदोम के पूर्ण विनाश की घोषणा करता है। इसलिए यह वह योजना है जो यहोवा ने एदोम के विरुद्ध बनाई है और उसने तिमान के निवासियों के विरुद्ध जो योजना बनाई है वह यह है कि भेड़बकरियों के छोटे बच्चों को भी खींच लिया जाएगा। निश्चित रूप से वे लोग अपने भाग्य पर आश्चर्यचकित होंगे। ओबद्याह के पास एदोम के लिए सबसे कठोर शब्द हैं। इसी तरह इन अहंकारी चट्टानों के निवासियों को उनकी जटिलताओं और यरूशलेम को बर्खास्त करने और इसराइली निर्वासितों को घेरने में उनकी सहायता के लिए विनाशकारी भाग्य का आदेश दिया गया है। बाइबल पाठ से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कि अंतर्विधान काल में भी हम एदोम और ज्ञान के बीच इस संबंध का संदर्भ देखते हैं। यहूदी अपोक्रिफल लेखन में बारूक, तिमन और एदोम को ज्ञान के भंडार के रूप में जोड़ा गया है। यह अध्याय 3:14 में कहता है, सीखो कि कहाँ बुद्धि है, कहाँ शक्ति है, कहाँ समझ है, ताकि तुम एक ही समय में समझ सको कि दिन और जीवन की लंबाई कहाँ है, कहाँ प्रकाश है, आँखें और शांति। और फिर ज्ञान कहाँ पाया जाता है, इसके कई उदाहरण पेश करता है। उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में कनान में नहीं सुना गया है और न ही तिमन में देखा गया है। तिमन और एदोम और उसकी ज्ञान परंपरा से एक लिंक फिर से जुड़ा है। दो अन्य कारण जिनसे अय्यूब और उसके दोस्त एदोम से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, वह अय्यूब के सेप्टुआजेंट अनुवाद का परिशिष्ट होगा, जिसमें एक लंबा संस्करण शामिल है जिसमें अय्यूब और उसके दोस्तों को एदोमाइट मूल के राजाओं के रूप में चित्रित किया गया है। इस परिशिष्ट में अनुवादक लेखक यह कहता है, ये वे राजा थे जिन्होंने एदोम में राज्य किया था, जिस देश में उन्होंने पहले बोर के पुत्र बेला पर भी शासन किया था, लेकिन बेला के बाद जोबाब जिसे अय्यूब कहा जाता था और उसके बाद हुशांग। जोबाब का यह संदर्भ उत्पत्ति 36 की एडोमाइट वंशावली से संबंध बनाता है। उत्पत्ति 36 में एसाव के वंशजों को बेला और फिर जोबाब के रूप में दिया गया है, जो बताता है कि शुरुआती अनुवादकों ने अय्यूब को एदोमाइट लोगों से जोड़ा था। तो फिर अगर ऐसा मामला है, अगर यह सच है कि अय्यूब और उसके दोस्त संभवतः एदोमाइट थे, तो क्या यह संभव है कि हम एदोमाइट ज्ञान की कोई समझ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें पुस्तक में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या एदोम के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें उन्हें उस संदर्भ में बेहतर स्थिति में लाने में मदद कर सकता है जहां से वे उभरे हैं? हम इसे देखना चाहते हैं और यह निर्धारित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि क्या हम एदोम के बारे में कुछ समझ सकते हैं जो इस संबंध में हमारी मदद कर सकता है। बाइबल के रिकॉर्ड के अनुसार इसराइल में राजशाही के आगमन से पहले एदोम में एक स्थापित राजशाही थी। उत्पत्ति 36 हमें बताता है, ये वे राजा हैं जिन्होंने एदोम देश में किसी राजा के इसराइलियों पर राज्य करने से पहले राज्य किया। हालांकि यह संभव है कि मूसा भ्रामक रूप से लिख रहा हो, टिप्पणीकार अक्सर यहाँ एक संपादकीय टिप्पणी देखते हैं। एदोम की राजशाही के बाइबल सारांश से पता चलता है कि इसके इतिहास के आरंभ में इसमें कुछ हद तक ज्ञान सामग्री की उत्पत्ति और प्रसार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक संगठन और सामाजिक सामंजस्य था, जो प्राचीन निकट पूर्व का सामान्य भंडार था। और ऐसा लगता है कि एदोम का अपने समय की विश्व शक्तियों के साथ काफी व्यापक संपर्क था। उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र के फिरौन रामसेस द्वितीय ने करनक के मंदिर में अपनी स्थलाकृतिक सूचियों में एडोमाइट प्रमुखों के थियोफोरिक नामों को सूचीबद्ध किया था। अन्य प्राचीन निकट पूर्वी स्रोत जो हमें इस संबंध में मदद करते हैं, वे तानिस में खोजे गए दो स्तंभ हैं जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, और वे एक संगठित, यदि कुछ हद तक दुर्जेय नहीं तो एडोमाइट संस्कृति का संकेत देते हैं। उन दोनों में से दक्षिणी स्टेल लीबियाई और न्यूबियन पर विजय की घोषणा करता है, जबकि उत्तरी स्टेल निम्नलिखित का उच्चारण करता है। इसमें कहा गया है, भयंकर उग्र सिंह जिसने एशियाई खानाब दोषों की भूमि को उजाड़ दिया है, जिसने अपने बहादुर हाथ से सेईर पर्वत को लूट लिया है। विलियम एफ अल्ब्राइट ने इसके बारे में उल्लेख किया कि लगभग 1300 माउंट सेयर पर पहले से ही मिस्र की सेना द्वारा हमला किए जाने का पर्याप्त खतरा था। इस संबंध में दिलचस्प है अनास्तासी पपीरी, जो एदोम की खानाबदोश जनजातियों के बारे में भी बात करती है। यह 13वीं शताब्दी में सेथोस द्वितीय के शासनकाल का है, और यह इंगित करता है कि एदोमी लोग आंशिक रूप से गतिहीन थे। यह उन्हें विदेशी लोगों के बजाय विदेशी भूमि के रूप में संदर्भित करता है। अंत में पपीरस हैरिस का एक संदर्भ, जो 12वीं शताब्दी में रामसेस III के शासनकाल का है, खानाबदोश सेराइट्स का उल्लेख करता है। वह कहता है कि मैंने एशियाई खानाबदोशों की जनजातियों के बीच सेईर का विनाश किया, मैंने उनके तंबू उजाड़ दिए। एदोम प्राचीन निकट पूर्व के व्यावसायिक मार्गों में एक प्रमुख स्थान पर स्थित था। यह किंग्स हाईवे के किनारे स्थित था और यह प्राचीन दुनिया में होने वाले यातायात और वाणिज्य के प्रवाह में केंद्रीय था। किंग्स हाईवे प्राचीन दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे मूल्यवान व्यापार मार्ग था। यह ट्रांस जॉर्डन क्षेत्र के एडोमाइट पहाड़ी देश से होकर गुजरा। इसने मिस्र और दमिश्क के बीच सीधा संबंध प्रदान किया। व्यापारिक विचारों और धर्म दोनों का प्रवाह सीधे एदोम के रास्ते से होगा। इस मामले में एदोम प्राचीन व्यापारिक केंद्रों के लिए एक प्राथमिक प्रवेश द्वार था, साथ ही साथ उसे अपने समय की कई संस्कृतियों और समाजों से भी परिचय मिलता था। वास्तव में कई लोग सुझाव देते हैं कि इन अरब व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के संघर्ष को लेकर समय के साथ इसराइल और एदोम के बीच प्रतिद्वंद्विता कड़वी हो गई, जहां तक एदोम की उसके स्थान के अनुसार प्राकृतिक पहुंच थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ लिखित सामग्री भी प्रसारित की जा रही थी। उदाहरण के लिए हम पाते हैं कि कम से कम 14वीं शताब्दी का गिलगमेश महाकाव्य कई स्थानों पर खोजा गया है जो काफी दूरी पर है, जिसमें ऊपरी सीरिया में अम्मार और कनान में मेगिद्दो शामिल हैं। इसके अलावा कासाइट प्रकार की मुहरों का एक भंडार है जो ग्रीस में खोजा गया है। इससे पता चलता है कि संस्कृतियों और धार्मिक विचारों का व्यापक आदान प्रदान हुआ। इसकी पुष्टि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब द्वारा जोफर के उत्तर में पूछे गए एक प्रश्न से होती है। वह पूछता है, क्या तुमने उन लोगों से नहीं पूछा जो सड़कों पर चलते हैं, और क्या तुम उनकी गवाही स्वीकार नहीं करते? संदर्भ वाणिज्यिक सड़कों तक पहुंच और अन्य लोगों और संस्कृतियों के साथ संपर्क का सुझाव देता है जो इन सड़कों, व्यापारियों और धार्मिक पर्यवेक्षकों के साथ यात्रा करेंगे। तो इसके आलोक में फिर हम एदोम को न केवल उसकी भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में बल्कि इन अन्य संस्कृतियों के साथ उसके धार्मिक संबंध के संदर्भ में भी कैसे स्थापित कर सकते हैं। एक प्रश्न जो हमें पूछना है वह यह है कि इस प्रसिद्ध एडोमाइट ज्ञान के इतने कम ठोस लिखित प्रमाण क्यों हैं? शिलालेखों की कमी है और इसने कुछ लोगों को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है कि हमें एडोमाइट ज्ञान के संश्लेषण को तैयार करने के किसी भी प्रयास को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। इस पर कई संभावित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि एडोमाइट ज्ञान के प्राथमिक उदाहरण वास्तव में हिब्रू बाइबल या पुराने नियम में शामिल किए गए हैं। इसका सुझाव 20वीं सदी की शुरुआत में रॉबर्ट फिफर ने दिया था। हालांकि इसमें कठिनाई यह है कि यह कुछ हद तक धार्मिक रूप से लापरवाह है। यह धर्मग्रंथित को निर्वासित करता है, यह रहस्योद्घाटन परमेश्वर की विशेष वाचा के लोगों इसराइल राष्ट्र की सीमाओं के बाहर उत्पन्न हुआ। नया नियम निर्दिष्ट करता है कि यहूदी लोग भगवान के विशेष रहस्योद्घाटन के प्राप्त करता थे, जैसा कि पुराने नियम के सिद्धांत में लिखा गया है। मध्यस्थ लोगों के रूप में उनकी विशेष भूमिका थी, जिन्हें पुजारियों का राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनना था। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि एदोमाइट सामग्रियों को पुराने नियम में शामिल करने के बजाय जब एदोम के लोगों को यिर्मयाह और ओबद्याह की भविष्यवाणी के अनुसार नष्ट कर दिया गया था, तो वे इतने पूरी तरह से नष्ट हो गए थे कि उस विनाश के मद्देनजर कोई लिखित सबूत नहीं बचा था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यही मामला है। दूसरों ने सुझाव दिया है कि शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन सेमिटिक भाषाओं के बीच समानता को समझने में यह संभव है कि एडोमाइट शिलालेखों की गलत पहचान की गई हो। यह दृष्टिकोण कुछ लोगों द्वारा अपनाया गया है, जिन्होंने तर्क दिया है कि एडोमाइट शिलालेखों को अतीत में गलत तरीके से हिब्रू या मोआबाइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसलिए कुछ लोगों ने इसके लिए यह दृष्टिकोण अपनाया है। इन सबको एक साथ रखने की कोशिश में एडोमाइट ज्ञान की धार्मिक रूपरेखा को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन कुछ सामग्रियों को देखना है जो इसकी ज्ञान परंपरा को प्रमाणित करती प्रतीत होती हैं, और इन्हें एक साथ रखकर उनके पास जो कुछ है उसके संश्लेषण में डालने का प्रयास करना है। जिस विद्वान ने इसे पूरी तरह से किया है वह रॉबर्ट फिफर हैं, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में एडोमाइट ज्ञान की प्रकृति के बारे में बहस करने में बहुत समय बिताया था। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि जब आप पुराने नियम को देखते हैं तो कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जो धर्मग्रंथ के कुछ अंश एक समान लोकाचार या धर्मशास्त्र के कुछ सिद्धांतों के समान दृष्टिकोण प्रदर्शित करती प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए वह तर्क देंगे कि नीतिवचन के अंतिम दो अध्याय आगुर और लेमुएल का अय्यूब की पुस्तक के साथ महत्वपूर्ण समानताएं हैं, जैसा कि स्तोत्र में कुछ अन्य भजनों के साथ है, और इसलिए उनका तर्क है कि इन्हें एक साथ रखकर हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि एडोमाइट ज्ञान में क्या शामिल होगा। हालांकि फिफर के दृष्टिकोण में कुछ कमजोरियां हैं, ऐसा लगता है कि वह सही रास्ते पर हैं। वास्तव में प्राचीन एदोम में एक बुद्धिमान सहमति थी और हम इसके पहलुओं को बाइबल में भी पा सकते हैं। सबसे पहले यिर्मयाह 49 और ओबद्याह जैसे अनुच्छेदों में एदोम के पौराणिक ज्ञान पर जोर दिया गया है, और यह उल्लेखनीय है क्योंकि एदोम को इसराइल का शत्रु माना जाता था, और भले ही वे इसराइल के दुश्मन थे, बाइबल के पाठ से पता चलता है कि वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित और प्रसिद्ध थे। दूसरा पहलू यह है कि सुलेमान को पूर्व के सभी पुत्रों से अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। फिफर इसे एडोमाइट्स का एक स्पष्ट संदर्भ मानते हैं क्योंकि अय्यूब को पूर्व के पुत्रों में सबसे महान माना जाता है। तीसरा, फिफर जैसा कि मैंने कहा, तर्क देता है कि धर्मग्रंथ के कुछ अंश इस एडोमाइट जोर को दर्शाते हैं। हम नीतिवचन 30 अगूर, जिसे कभी कभी नीतिवचन की पुस्तक का कार्य भी कहा जाता है, तक जा सकते हैं। हम भजन 89 और भजन 88 और अन्य स्थानों पर जा सकते हैं। अंत में फिफर ने इस परिकल्पना को जोड़ते हुए जॉब और नीतिवचन में एडोमाइट धर्मशास्त्र के साथ यहूदी धर्मशास्त्र को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि एडोमाइट ज्ञान निराशावादी और अज्ञेयवादी था, कि यह मानव कानून को प्रतिशोधात्मक पुरस्कार या दंड की कोई उम्मीद के बिना परिश्रम के रूप में देखता था। ईश्वर को मानवीय मामलों से दूर और असंबद्ध, पूर्णतः संप्रभु और सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। अपने काम में, जैसा कि मैंने कुछ एडोमाइट ज्ञान अंशों और अन्य चीजों की जाँच की है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम एडोमाइट ज्ञान को तीन सिद्धांतों को शामिल करते हुए संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला यह कि परमेश्वर एक डरावना परमेश्वर था। ईश्वर वह ईश्वर था जो भय उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए कई लोगों ने तर्क दिया है कि एदोमियों का ईश्वर प्रकृति का ईश्वर था जो भयानक और रहस्यमय था। हालांकि इसे वास्तव में समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि दोस्तों ने क्या कहा और उन्होंने जो कहा वह कैसे प्रतिबिंबित हुआ या नहीं। हमारे पास मौजूदा साहित्य में एडोमाइट भगवान को कोस के नाम से जाना जाता था। हम इसे एज्रा 2 और नहेमायाह 7 में प्रतिबिंबित देखते हैं, जहां इसराइल राष्ट्र के बाहर एदोमियों का थियोफोरिक नाम बार कोस है, जिसका अर्थ है कोस का पुत्र। और इसलिए कुछ लोगों ने तर्क दिया है, यदि हम कोस की प्रकृति को समझते हैं तो इससे हमें एदोमाइट धर्म की प्रकृति और ईश्वर के प्रति एदोमाइट दृष्टिकोण को समझने में बेहतर मदद मिलेगी। एक लेखक जिसने हाल ही में इसके साथ बातचीत की है वह लॉरेंस ज़कमैन हैं। उनका तर्क है कि एडोमाइट गॉड कोस को समझने का सबसे अच्छा तरीका इसे हिब्रू शब्द कोट्स से जोड़ना है, जिसका अनुवाद वह एक घृणित भय महसूस करने के लिए करता है। यदि यह मामला है तो कोट्स और इसलिए कोट्स शब्द उस भय को इंगित करेगा जो इस अलौकिक अनुभव के परिणामस्वरूप किसी पर आता है। ज़कमैन ने इस व्युत्पत्ति की तुलना अध्याय 31 में उत्पत्ति की पुस्तक में दिए गए ईश्वर के विशेषण इसहाक के भय से की है, जिसका उपयोग यहोवा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बाद में परिच्छेद में यहोवा को केवल भय के रूप में वर्णित किया गया है जब याकूब अपने पिता इसहाक के भय की शपथ लेता है। यदि जिकमैन का प्रस्ताव सही है तो इसका मुख्य मित्र एलीपस के ज्ञान धर्मशास्त्र पर प्रभाव पड़ता है। एलीपस भी तब एक ऐसे देवता की सदस्यता लेगा जो भय उत्पन्न करता है। अय्यूब 4 में एलीपस ने अपने दूरदर्शी अनुभव का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, और यह इरादा है, इसे ईश्वर की ओर से विशेष रहस्योद्घाटन माना जाता है। उसने जो देखा उसे रेखांकित करते हुए वह उस भय के बारे में बात करता है जो इस रहस्यमय प्राणी ने उत्पन्न किया था। श्लोक 14 और 15 में उनका चित्रण प्रभावशाली है। वह यूं कहता है, भय मुझ पर छा गया और कांपने लगा, जिससे मेरी सारी हड्डियां कांप उठीं। एक आत्मा मेरे चेहरे से गुजर गई और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। एलीपस ने दो बार आतंक का वर्णन करने के लिए भय शब्द को संज्ञा और क्रिया के रूप में उपयोग किया है, जिसे देवता अपनी मनोदैहिक प्रतिक्रिया का वर्णन करने के लिए समानार्थी शब्द कांपने के साथ प्रेरित करता है। पूरे भाषणों में एलीपस ने धार्मिक अनुभवों का वर्णन करने के लिए भय या भय शब्द के लिए एक उल्लेखनीय प्राथमिकता प्रदर्शित की है, जिसमें परमात्मा को महसूस किया जाता है या महसूस किया जाता है। यह शब्दावली सहायक है क्योंकि एलीपस ने अपने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को चित्रित किया है कि दुष्टों ने न्याय में ईश्वर की निराशाजनक उपस्थिति का निश्चित रूप से अनुभव किया है। अपने दूसरे भाषण में एलीपस ने इस शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया है कि जब दुष्ट व्यक्ति के कानों में भय या आतंक की आवाजें पड़ती हैं तो उसे दैवीय प्रतिशोध मिलता है। और फिर अंत में अपने तीसरे भाषण में वह उस भय और आतंक के बारे में बात करता है जिसने अय्यूब को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में पकड़ लिया है। वह कहता है, इसलिए फंदे तुम्हारे चारों ओर हैं और अचानक भय तुम पर हावी हो जाता है। तो भगवान भय का भगवान है। दूसरा सिद्धांत मैं इस प्रकार वर्णित करूंगा, ईश्वर दूर है। वह पूरी तरह से उत्कृष्ट है। वह निर्मित व्यवस्था से भी ऊपर है। एलीपस ने अपने भाषणों में भी इस पर जोर दिया है। स्वप्न दर्शन की अपनी पुनर्कथन में वह आत्मा जो उसे रहस्योद्घाटन देती है, ईश्वर और मनुष्य के बीच की विशाल खाई पर जोर देती है, जो किसी भी नश्वर को ईश्वर के साथ धार्मिकता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है। उदाहरण के लिए वह कहते हैं, क्या नश्वर मनुष्य ईश्वर के समक्ष सही हो सकता है? क्या कोई मनुष्य अपने रचिता के सामने पवित्र हो सकता है? वह अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता, वह अपने स्वर्गदूतों पर भूल का आरोप लगाता है। यह दिव्य उत्कृष्टता इतनी महान है कि दिव्य देवदूत भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। अपने दूसरे भाषण में एलीपस ने सृजित व्यवस्था से ईश्वर के पूर्ण अलगाव के कारण नश्वर मनुष्य की निंदनीयता के विषय में इस स्वप्न दृष्टि की सामग्री को दोहराया। मानव जाति घृणित है। वह अय्यूब 15 में कहता है, मनुष्य क्या है कि वह शुद्ध हो सकता है? जो स्त्री से जन्मा है वही धर्मी हो सकता है। देखो, परमेश्वर अपने पवित्र लोगों पर भरोसा नहीं रखता और स्वर्ग उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं है। वह कितना घृणित और भ्रष्ट है, वह मनुष्य जो अन्याय को पानी की तरह पीता है। दैवीय उत्कृष्टता एलीपस के लिए दैवीय अबोधगम्यता को भी छूती है। अपने पहले भाषण के उत्तरार्ध में एलीपस ने ईश्वर को मानव जाति के लिए काफी हद तक अज्ञात के रूप में चित्रित किया। वह ईश्वर जो महान और अप्राप्य कार्य करता है, अनगिनत अद्भुत कार्य करता है। उनके तीसरे भाषण से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। चूंकि ईश्वर को मानवता के मामलों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए मानवीय प्रयास उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अय्यूब 22 में एलीपस कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर के लिए लाभकारी हो सकता है? क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे लाभ पहुंचा सकता है? यदि आप धर्मी होते तो सर्वशक्तिमान को क्या खुशी होती? यदि आपके आचरण निर्दोष होंगे तो उसे क्या लाभ होगा। और मानवीय मामलों के प्रति चिंता की यह कमी इस अत्यंत दैवीय दूरदर्शिता या दूरी से उत्पन्न होती है। वह अध्याय 22 श्लोक 12 में कहता है, क्या ईश्वर स्वर्ग में सर्वोच्च नहीं है? ऊंचे ऊंचे तारे देखो, वे कितने ऊंचे हैं। एलीफास के लिए ईश्वर भौतिक ब्रह्मांड से बहुत दूर है। ईश्वर पूरी तरह से उत्कृष्ट है और मानवीय मामलों से काफी हद तक असंबद्ध है। और फिर अंततः तीसरा सिद्धांत यह होगा कि ईश्वर एक प्रतिशोधी ईश्वर है। ईश्वर मनमौजी ढंग से प्रतिकारक है। एलीपस और अन्य मित्र एक ऐसे देवता की कल्पना करते हैं जो मनुष्य के साथ अपने व्यवहार में मनमौजी है। हालांकि कभी कभी इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में असंगतता होती है, एलीफास मुख्य रूप से एक ईश्वर पर उपदेश देता है जो एक लौकिक न्याय मीटर के रूप में मनुष्य को दैवीय इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 4 में एलीपज ने दुष्ट को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जो ईश्वर की सांस से नष्ट हो जाता है और उसके क्रोध के विस्फोट से भस्म हो जाता है। ईश्वर मानवीय मामलों में सर्वशक्तिमान मध्यस्थ है जो अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने ढंग से सजा या आशीर्वाद देता है। एलीपज कहता है कि वह घायल करता है परंतु बांधता है, वह चकनाचूर हो जाता है परंतु उसके हाथ ठीक हो जाते हैं। ईश्वर का भौतिक आशीर्वाद और विनाशकारी दंड उसके दिव्य चरित्र से नहीं बल्कि इस बात से आता है कि ईश्वर मनुष्य और उसके आचरण पर क्रोध करता है या नहीं। अध्याय 15 में दुष्ट को दंडित किया गया है क्योंकि उसने ईश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया है और सर्वशक्तिमान की अवहेलना की है। यह कहीं भी दैवीय नैतिक चरित्र से जुड़ा नहीं है बल्कि यह पाश्विक इच्छा शक्ति का कार्य है। तीसरे भाषण में एलीपज ने प्रतिपादित किया कि दुष्टों को दंड दिया जाता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे हमारे पास से चले जाओ, और सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है। इस प्रकार ईश्वर की असीम शक्ति के प्रति समर्पण ही सर्वोच्च भलाई है। जबकि रैंक बुराई ईश्वरीय इच्छा की अवहेलना और विरोध करना है। एलीपस के लिए ईश्वर एक प्रतिशोधी ईश्वर है, लेकिन प्रतिशोध दैवीय नैतिक चरित्र से जारी होने में विफल रहता है बल्कि यह केवल उसकी इच्छा शक्ति का बल है। तो फिर एडोमाइट ज्ञान की रूपरेखा का विश्लेषण करने के बाद हम अय्यूब के मित्र की भूमिका और सिद्धांतों को समझने की बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि वे पुस्तक के उद्देश्य से संबंधित हैं। उनकी सलाह अय्यूब को यह मानने के लिए मजबूर करने के गुमराह और अंततः असफल प्रयास पर आधारित है कि एक भयानक, पूरी तरह से उत्कृष्ट और मनमाने ढंग से प्रतिशोधी भगवान ने अय्यूब को उसके पापों के उचित अनुपात में दंडित किया है। अय्यूब को इन पापों को स्वीकार करना होगा और पश्चाताप करना होगा। एलीपस और अन्य मित्रों के अनुसार यदि वह ऐसा करता है तो उसे परमेश्वर का अनुग्रह पुनः प्राप्त होगा और वह अपने पिछले भाग्य में बहाल हो जाएगा। हालांकि पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ईश्वर के विधान के डिजाइनों को समझने के लिए इन प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोणों को नष्ट करना है। जैसा कि पुस्तक प्रमाणित करती है, ईश्वर संप्रभु, स्वतंत्र और दयालु है। उसे इस सरल कारण और प्रभाव के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह पुस्तक ज्ञान के स्याह पक्ष को प्रदर्शित करती है। ये ऐसे परिदृश्य हैं जब नीतिवचन के सामान्य सिद्धांत पतित दुनिया की वास्तविकताओं का हिसाब देने में विफल हो जाते हैं। इसके बारे में और अधिक कहा जाएगा क्योंकि हम अगले भाग पर विचार करेंगे। अगले खंड में हम एलीफास को देखेंगे, विशेष रूप से उसके भाषणों के माध्यम से, क्योंकि वह अय्यूब को उसके पापों को पहचानने और पश्चाताप करने के लिए दैवीय तुष्टिकरण के स्थान पर लाना चाहता है। मैं सुझाव दूंगा कि वह ऐसा करने में विफल रहे। पुस्तक के अंत में उसे इस तरह से डांटा गया है जिससे हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि पुस्तक क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है और एलिपस का कार्य पुस्तक में क्या है। इसलिए मैं आपको हमारे अगले खंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम एलिफास को देखते हैं, विशेष रूप से उनकी प्राचीन निकट पूर्वी ज्ञान थियोडिसी के संदर्भ में। यह डॉक्टर काइल डनहम हैं, जो अय्यूब के पवित्र ऋषि एलिफास पर अपनी शिक्षा दे रहे हैं। यह एदोमाइट ज्ञान के संदर्भ में सत्र संख्या 1 एलिफास है।